बहुत ही खूबसूरत आयत हमने पढ़ी, थोड़ी सी बात अब इन्नम सदकातुलिल फुकराई वल मसाकीन आयत 60 के बारे में। आप देखिए कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला का एक नाम अर्रज़्ज़ाक भी है, और अर्रज़्ज़ाक ने इस चीज़ का वादा किया है कि हर एक का रिस्क मुकर्रर करेगा। अल्लाह ताला को इस चीज़ का हक हासिल है कि वो हर मखलूक की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करें। ज़कात के ये मसारिफ हमें अल्लाह ताला के अर्रज़्ज़ाक होने का यकीन भी दिलाते हैं। और पीछे हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ एतराज़ात थे मुनाफिकीन की तरफ से कि आप माल गनीमत की सही बांट नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस आयत को लाकर उस गलत फहमी को दूर कर दिया कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से कुछ लोगों को लेते या देते हैं। एक नबी से इस बात की तवक्को भी नहीं की जा सकती कि वो कोई ऐसी तकसीम करेगा जो उसकी अपनी राय से हो। वो नबी जो अपनी मर्ज़ी से बोलता नहीं, अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बात नहीं करता, ये कैसे हो सकता है कि माली मामलात में वो आपके मामले में इस तरह का रवैया अख्तियार करें। फिर एक हदीस है अबू दाऊद और दारुल कुतनी में आती है, ज़ियाद बिन से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा, पता चला कि आप इनकी कौम के मुकाबले में एक लश्कर मुसलमानों का रवाना फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी अब लश्कर ना भेजें, मैं इसका ज़िम्मा लेता हूँ कि वो सब मती और फरमा बरदार होकर आ जाएंगे। फिर मैंने अपनी कौम को ख़त लिखा तो सब के सब मुसलमान हो गए। इस पर आपने फरमाया, मतलब एक बड़ा खूबसूरत कमेंट था जिसमें गोया इनको ये खिताब दिया गया कि ये अपनी कौम के महबूब और मुक्तदा हैं। तो मैंने इसमें कहा कि अल्लाह के नबी मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह के करम से इनको हिदायत हो गई और वो मुसलमान हो गए। ये कहते हैं कि मैं अभी इसी मजलिस में बैठा ही हुआ था कि एक शख्स ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए और उसके जवाब में आयत नाजिल हुई कि इन नमस सदकातुल फुकरा, यानी ये गवाही देते हैं कि ये आयत इनके सामने नाजिल हुई। तो अब इस आयत का शान नज़ूल सुनने से एक दो चीज़ें समझें। पहली बात है कि अल्लाह के नबी का मकसद क्या होता था कि कौमें मती हों। जब कौम मती हो गई तो आपने उसकी तरफ चढ़ाई करने का इरादा तर्क कर दिया। दूसरी बात यह कि माल की सही बांट इस्लाम में से, और जब हकदारों को उनका हक पहुँचता रहे तो बहुत ज़्यादा खैर होती है। तीसरी बात नोट कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनकी तरबियत का बड़ा खूबसूरत एक मौका था। इखलाकी तरबियत इस तरह की हुई थी कि जिसको जो जब जहाँ जितना मिल गया उसने उसको खुशी से ले लिया। फिर दूसरी बात देखिए कि जिनके पास नहीं हैव नॉट्स, और वो हैं जिनके पास हैव से लेकर हैव नॉट्स को देना, यानी साहिब नसाब लोग अगर अपनी ज़कात पूरी ईमानदारी से देने लग जाएं तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सबकी रोज़ी रोटी का निज़ाम चलेगा। आज हम अपने मुल्कों की हालत देखें या इवन पूरी दुनिया, जहाँ बहुत दुनिया में एक पंपन शो है, वहाँ भी गुर्बत बहुत सारी है। इसके वजह क्या है कि उनके निज़ाम ठीक नहीं है। वहाँ टैक्स के मसारिफ दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो बांट जो अल्लाह दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि माशरे के पिसे हुए तबके को अहमियत दी जा रही है। हर एक बंदा अल्लाह ताला का बंदा है और अल्लाह ने उसको मुख्तलिफ हालात में पैदा किया है, तो लिहाजा जब वो ये सारा कुछ होता है तो उसको अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन उस रब ने उसके इंतज़ाम भी किए हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए कि आयत का आगाज़ इन्नमा से हुआ, हसर बोलते हैं इसको, बाउंडेड है, यानी ये जो बयान की इसके अलावा ज़कात कहीं नहीं लगेगी। हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है ये भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये एक पूरे सेट सिस्टम की बात है। चूँकि आज सेट सिस्टम नज़र नहीं आता, इस्लामी हुकूमतें नहीं हैं, भी हैं तो उनके अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं है, तो ज़कातें फिर लोग अपनी मर्ज़ी से देते हैं। बाज़ अपनी मासियों को दे देते हैं, बाज़ मस्जिदें बनाने में और रिफाह आमा के कामों में, बल्कि हॉस्पिटल्स तक पूरे के पूरे उस नाम से बना दिए जाते हैं। हालांकि कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, उसके अंदर खिदमत पेश की जा सकती है। और ये जो लफ्ज़ है, यहाँ पर एक सवाल और लिखिए कि सदुका का लफ्ज़ क्यों है, सदक़ात क्यों कहा गया? तो सदका सिद्क से है, सच्चाई। आप अल्लाह के मामले में देने में सच्चे हैं। देने वाला ये दावा करता है कि मैं अपने कॉल और फेल में सच्चा हूँ, इस खर्च करने की मेरी कोई दुनियावी गरज नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर रहा हूँ, नाम और नमूद नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि सदका एक नफली होता है और एक फ़र्ज़ सदका होता है। फ़र्ज़ सदक़े का ही दूसरा नाम ज़कात है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं खुस मिन अमवालियन सदकतन, आप इनके मालों में से सदका लीजिए। तो इससे क्या पता चलता है कि मुसलमान हुक्मरान इसका एहतमाम करेगा कि लोगों ने ज़कात दी है कि नहीं दी। इस्लामी हुकूमतों में ऐसे ही था। रह गई बात पहली कैटेगरी फ़ुकरा, तो फ़ुकरा फ़कीर से, फ़कीर कमर तोड़ महंगाई का शिकार शख्स। फ़क्र कहते हैं कमर के मोहरों को, मुराद है कि जिसको कहते हैं ना फलां की तो कमर ही टूट गई, ज़रूरियात भी नहीं पूरी कर पाता, ठीक है। इस शख्स के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं। याद रखिए ये बेगर्स नहीं है, ये वो सफ़ेदपोश लोग होते हैं कि जो वाकई चाहते हैं कि किसी से ना मांगे लेकिन उनको लेना पड़ता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि फ़कीर के लफ्ज़ के अंदर कह लीजिए कि इसके पास कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा लफ्ज़ मिस्कीन है, इस पे बहुत गड़बड़े हैं। बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं मेरा फलां है वो ऐसा है मिस्कीन है, तो आप इस पे बहुत डिटेल्स इंशाल्लाह बुक के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आपको खुलासे में बता दूं कि हैंड टू माउथ कुरान में ये लफ्ज़ मिस्कीन उस शख्स के लिए भी आया कि जिसके पास कश्ती तो थी। आप सूरत कहफ़ में ये वाक़या पढ़ते हैं कि वो कश्ती किनकी थी, उन दो मिस्कीन लड़कों की थी। तो कहते हैं कि मिस्कीन वो है कि जिसके पास कोई चीज़ थी लेकिन अब उसका खर्चा नहीं पूरा रहा, गाड़ी है पेट्रोल नहीं है, घर तो है रहने का रोटी नहीं है, जॉब चली गई, कोई ऐसा खर्चा आ गया। लेकिन याद रखिए जिन लोगों के पास जेवरात की सूरत में जेवर मौजूद है, कोई जायदाद मौजूद है, फिर उनको खुद तो बिल्कुल तकाजा नहीं करना चाहिए। आप किसी को सफ़ेद पोश समझ कर ढूंढ ढांड के कुछ उसकी मदद करें ये एक और इशू है, लेकिन ख़ुद से कोई नहीं ले सकता, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक तो इंसान को फिर आदी बना देती है और दूसरी बात यह है कि वो फिर जो मेहनत कर रहा था वो मेहनत भी छोड़ देगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि अमूमन फ़कीर और मिस्कीन के लफ्ज़ में कोई फ़र्क भी नहीं है इतना ज़्यादा कुरान पाक में। फिर उसके बाद आप देखिए क्या ये ज़कात का माल नॉन मुस्लिम को दिया जा सकता है, तो आम सदका तो बड़ी खुशी से गैर मुस्लिमों को दें। नबी सल्लम ने फरमाया कि तसद्दकू अला अहलिल अदियानी कुल्लिहा, हर मज़हब वाले पे सदका करो। लेकिन जब सदका ज़कात के बारे में पूछा गया तो हज़रत माज को यमन भेजते वक्त आपने कहा था माले ज़कात सिर्फ़ मुसलमानों के दौलतमंदों से लिया जाए और इन्हीं के फ़कीरों पर सर्व किया जाए, तो ये मुस्लिम की शर्त के साथ है। क्यों? देखिए बहुत सादी सी बात है, मुस्लिम की शर्त के साथ इसलिए है कि अगर मुस्लिम को छोड़कर गैर मुस्लिमों को ही ये मिल गया तो फिर जो मुस्लिम मोहताज हैं उनको कहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि दूसरे माल में 97.5 में से आप जिस मर्ज़ी गैर मुस्लिम को दीजिए। हाँ, रह गई बात किन गैर नॉन मुस्लिम्स को दिया जा सकता है, जो मुअल्लफ़ति कुलूब है, जिनके दिलों में इस्लाम की रग़बत है, इवन इसमें न्यू मुस्लिम्स भी आते हैं। देखिए देने से बंदे के दिल में दूसरे की मोहब्बत आती है, इसमें कोई शक नहीं है, जो आपको देता है आपके दिल में उसकी भी मोहब्बत होती है। तो लिहाजा ऐसे लोग जो आज के दौर में देखे रिवर्ट्स हैं, घर बार छोड़े हैं, जॉब चली जाती है, बाज़ लोगों को उनके रिश्तेदार छोड़ देते हैं, बच्चे हैं तो माँ बाप पीछे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत शौक से और खुशी से ढूंढ के देना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए आमिलीन अलैहा, अब एक बैंक है उसमें लोग काम करते हैं तो बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन है उसी में से तनख्वाहें जाती हैं। इसी तरह जो ज़कात जमा होगी तो उसमें से ऐसे लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो दी जाएंगी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर इसी तरह वबनिस सबील मुसाफिर है, घर में बहुत कुछ है लेकिन सफ़र में खाली है, अब उस पर कोई ज़कात के माल में से कुछ खर्च करे तो कोई हर्ज की बात नहीं, उसको भी उसमें से दिया जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि तनख्वाहें इतनी ना हो जाएं कि सारी ज़कात तनख्वाहों में चली जाए और ख़त्म ही हो जाए सारा इशू, असल हुक्म की रूह जो है ना वो नहीं मुतासर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह से चंद बातें और भी हैं, मसला आप देखिए कि जैसे ज़कात का माल किसी ने किसी को दिया, किसी की मासी है, किसी के घर गई उसने उसको ज़कात का 2,000 रुपया दिया, अब आप उसके घर किसी दिन चले गए ऐसे ही कोई भी मौका बनाकर, अब उसने चाय बनाई उन्हीं पैसों में से दूध खरीदा, तो आप क्या कहेंगे? वहम करेंगे, शक करेंगे, इसके पास तो ज़कात के पैसे नहीं। हदीस में आता है कि अब तुम्हारे लिए वो हदी है, यानी फिर तो अब गरीब रिश्तेदारों को खाएं पिएं भी ना उनके घर से कि पता नहीं इनको ज़कात मिलती है कि नहीं मिलती। फिर ये कि अपने करीब के ख़ानदान के रिश्तेदारों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है कि सारा माल जमा हो एक जगह और हुकूमत की कंस्टडी में हर जगह के लोगों को पहुँचे। अगर हुकूमत अब ये काम नहीं कर रही तो फिर ऐसी इस्लाही इंतज़ामी तंजीमात होनी चाहिए कि जो ज़कात का माल ले और ख़र्च करें। यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि ज़कात का माल लेकर सिर्फ मदरसे ही तामीर करते रहना और उधर ही फजूल खर्चियाँ करना ये भी जायज़ नहीं है। ठीक है, खास हद तक फी सबीलिल्लाह की मद में हम ज़कात को लेते हैं, देते हैं, लेकिन उनको भी अपने तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि गरीबों तक पहुँचाएँ, उस शहर के गरीबों तक वो खुद अपने हिसाब से पहुँचाएँ। और ये ना हो कि बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई बड़ी बड़ी ज़कात के माल से, लेकिन लोगों के घर में खाने को पैसा भी नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज़ भी होती है, और वो क्या है कि जिस तरह ज़कात है इसी तरह उशर भी है और सदकातुल फितर भी है। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे चूँकि कही गई हैं तो इनको कोशिश करना चाहिए कि एज़ सून एज़ जो है वो वहाँ पे पहुँचा दिए जाएँ। एक और सवाल है, पिछली ज़िंदगी में ज़कात नहीं दी, आज पता चला, हत्तुल बसार याद करके गिन के दें और उसके बाद खुला दें। जब कोई चीज़ सदके में दें ना किसी ऐसे को जिसको आपके गुमान में आता है ज़कात भी लगती है, तो नीयत ज़कात की कर लें कि अल्लाह मेरी भूली बिसरी पिछली ज़िंदगी की छुट्टी हुई ज़कात जो मैंने नहीं दी, दी नहीं दी, ज़्यादा कम थी तुझे पता है, तो उसमें डाल दे। और वैसे भी रिवायत से ये पता चलता है कि जो हमारी फ़र्ज़ ज़कात रह जाए कभी किसी भूल चुक में, तो उसकी तलाफ़ी हमारे सदक़े के माल से होती है। तो कसरत से फिर सदका देना चाहिए। फिर इसी तरह फिर रिकाब का हिस्सा, आज नहीं तो बाज़ कहते हैं कि इसके ऊपर आज के दौर में कैदी जेलों में बेगुनाह पड़े हुए हैं उनके लिए, उनको भी दिया जा सकता है। तो बहरहाल इस पे बहुत सारी तफसीलात हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं हम जब दुनिया से जाएं तो हमारे ऊपर एक पैनी भी ज़कात की ना हो, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे गिने लिखे। देखिए ये वो चीज़ है जो गिनने लिखने के लिए भी आती है, इसलिए इसके ऊपर रखें। और आप जब ये मौजू पढ़ेंगे फिर आपके कई सवालों का जवाब मिलेगा कि अच्छा पैसा किसी को दिया हुआ है क्या उस पर भी ज़कात दें, बिल्कुल दें, उम्मीद ही नहीं उस पैसे के मिलने की, अब क्या करें, जब मिल गया उस वक्त पिछले सारे सालों की देंगे। तो अल्लाह जब लिखत पढ़त को इतनी अहमियत देता है तो मैं आप कैसे इन चीज़ों से अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि एक और बात करके अब अगली आयत पे चलेंगे, और वो क्या है कि माली मामलात के पीछे भी मुनाफिकत का जिक्र है और माली मामलात के बाद भी। आज भी कह लेती हूँ कि जहाँ माल लगाना पड़ता है और उनको जो लगाना नहीं चाहते माल या जान, तो वहाँ निफाक आने लगता है। इज्तमाई कॉज पे कुछ भी हो, माल लगे, वक्त लगे, सेहत लगे, जान लगे, कुछ भी लगे, उस वक्त दिल का खोट और खपट सामने आता है। अल्लाह के नबी पर एक इल्ज़ाम तो पीछे ये लग गया कि जी आप अपनी पसंद के लोगों को ज़्यादा दे देते हैं, अब दूसरा इल्ज़ाम देखिए आयत 61, वमिनहुमुल्लज़ीन यूज़ूनन नबी व यकूलून हुवा उज़ुन, और इनमें से वो लोग भी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाते हैं और कहते हैं कि ये तो निरे कान है। असल में अरब लोग ये एक मुहावरे के तौर पे बात बोला करते थे कि जो बंदा बड़ा सादा लौ हो, हर एक की बात का एतबार कर ले, तो उसको कहते थे ये तो निरा कान है, यानी मुबालगे की हद तक उसको कान कहते हैं। अब अल्लाह के नबी के बारे में मुनाफिक क्या देखते थे, हम आते हैं इनके सामने झूठे सच्चे बहाने बनाते हैं आप मान लेते हैं, नऊज़ु बिल्लाह आपको तो समझ ही नहीं, आपको बातों में लगाना उतारना बड़ा आसान है, आपकी तौहीन करते थे। फरमाया व यकुलू न हुआ उज़न, जवाब क्या है, कुल आप कह दीजिए, उज़ुनु खैरिल लकुम यूमिनु बिल्लाही व यूमिनु लिल मोमिनीन, आप कहिए कि ये कान तुम्हारी बेहतरी के लिए हैं, वो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और बात मान लेते हैं अहले ईमान की। यहाँ देखिए यूमिनु के बाद बा और लाम के सिले से मानी बदल गया, आ माना यूमिनु बी आए तो ईमान लाना, और लाम के साथ आए तो बात मानना और यकीन करना, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो मगर आपकी शराफत, आपके अंदर मुरव्वत और आपकी सच्चाई बता रही है कि आप झूठी बातें सुनकर भी लोगों को शर्मिंदा नहीं करते थे। बहुत प्यारी क्वालिटी लीडरशिप की, माँ को भी इस बात पे अमल की बात मिलती है, यकीन भी हो ना कि बच्चा झूठ बोल रहा है उस वक्त ना उसको शर्मिंदा करें, बाद में पूछे बेटा इधर आइए ये क्या कह के आए हैं। हम जब लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं ना तो उससे गड़बड़ हो जाती है। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इस बात की भी दलील है कि हमेशा इस्लाह की कोशिश और ख्वाहिश रखनी चाहिए। और यहाँ बताया गया कि तुम कितने अहमक हो, तुम अपने ज़ोम में रसूल को धोखा दे रहे हो लेकिन उनको पता भी है फिर भी वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहे, तो एक मोमिन की बिसारत तो वैसे ही बहुत है। हदीस में आता है इत्तकु फिरासतल मोमिनी फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो ये अल्लाह के नूर के साथ देखता है, यानी अल्लाह दिलों में सुझा देता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और नबी की अब दूसरी खूबी, पहली क्या थी उज़ुन, तुम बुरा कहते हो अल्लाह उसको अच्छा कह रहा है, क्या नबी मुंह फट होते नऊज़ बिल्ला, बहुत ही ज्यादा लोगों को आगे शर्मिंदा ढीठ करने वाले होते फिर अच्छे थे। क्या हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं? नहीं। तो दूसरी को भी वरहमतुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और तुम में जो वाकई मोमिन है इनके हक में भी रहमत है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह के नबी मोमिनों के लिए रहमत कैसे थे। आप देखिए कि अल्लाह के नबी मोमिनों को नेकियां करने के मौके देते थे, उनकी इस्लाह की फ़िक्र करते थे, उनको जिहाद के लिए अपनी जान माल लगाने की रग़बत देते थे, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हर खैर की दावत देते थे। इससे बड़ी रहमत क्या है बताइए? कोई शख्स जो आपको नेकियों के मौके दे, वो रहमत है आपके लिए कि ज़हमत है? बज़ाहर लगता है आपको उसने काम दे दिया, उसने आपको मुश्किल में डाल दिया, क्या रहमत है कि ज़हमत? रहमत है। वल्लज़ीना यूज़ून रसूलुल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, और जो ईज़ा पहुँचाते हैं अल्लाह के रसूल को, इनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। यानी ऐसी बातें करने वाले अपनी फ़िक्र कर लें, करते क्या? आयत 62 में दोबारा वही बात जो पीछे भी गुजरी, यहलिफूना बिल्लाही। यहाँ बड़ा एक अहम फ़र्क नोट कीजिएगा, ए मुसलमानों, ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं, लकुम तुम्हारे सामने, लियुर्दूकुम ताकि तुम्हें राज़ी करें। गौर कीजिएगा, यहलिफूना बिल्ला, बा का लफ्ज़ आया है, कसम तो अल्लाह के नाम की खाते हैं, खाते कहाँ खड़े होके? लकुम तुम्हारे सामने, मकसद के लियुर्दूकुम ताकि तुम्हें सबको राज़ी कर दें। मुनाफिक की एक बड़ी तड़प होती है कि लीडर मुझसे बहुत खुश रहे, जो सामने बंदा मौजूद है वो मुझसे बड़ा खुश रहे। आप नबी सल्लम से एक दफ़ा पीछे हो जाते, ये नहीं गवारा करते, कहते क्या आते सोचते, कहते करें कुछ ना, पर अल्लाह के नबी को लगे हम सब कुछ करते हैं, हमारा नाम हो। तो आपके सामने आकर अपनी झूठी मोहब्बतें दीन के साथ जो थी उसका तذکرہ करते थे। अल्लाह अपने नबी को बता रहे हैं कि अब ये जो तबूक की मुहिम चल रही है, इसकी तैयारी में भी मुनाफिकीन का यही तरीक़ाकार होगा। झूठे बहाने बनाकर आएंगे, कस्में खाएंगे, रुख्सतें मांगेंगे कि हम बड़े मुखलिस हैं, ये है वो है, तो जवाब दे दो, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन, अल्लाह और इसका रसूल इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि वो इन्हें राज़ी करें अगर वो वाकयातन मोमिन है। यानी नबी को तो झूठी झूठी बातें करके राज़ी कर रहे हैं, पर कभी इन्होंने सोचा कि वो जो बिज़ाती सुदूर है, दिल की बातें जानता है, क्या वो इनसे राज़ी भी है कि नहीं? तो क्या पता चला, कोई बड़े से बड़ा लीडर चाहे वक्त का नबी क्यों ना हो, किसी से राज़ी हो भी जाए, जब तक अल्लाह उससे राज़ी ना हो वो कामयाब नहीं है। कितनी डराने वाली बात है। यहाँ बैठकर मैं आपको राज़ी करना चाहूँ, आप मुझे राज़ी करना चाहें, और ना मेरे से रब राज़ी हो ना आपसे रब राज़ी हो, तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या पता चलता है? फ़िक्र करे इंसान अपनी। अल्लाह ताला आखिरी आयत में कहते हैं, अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहू, क्या वो जानते नहीं कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे। ये जो हादिद का लफ्ज़ है ना, हद, हाँ, दाल दाल चाकू को भी कहते हैं, किनारा, हद, मुखालफत के मानों में। यानी इस तरह बातों से राज़ी करने वाले अंदर से इस्लाम की जड़ें काटते हैं। कभी इन्होंने ये सोचा कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले पे आगे फ़न्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, तो उनके लिए तो जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल हिज़्ज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी रसवाई है, जहन्नुम की आग भी और रसवाई भी है। कैसे, क्यों? इससे क्या पता चला कि बातों से खुश करने वालों से खुश होने की बजाय आप इस बात की फिक्र करें कि अल्लाह उनसे राज़ी है कि नहीं। आप देखिए कि इस पूरे सबक में आप देखें तो आगाज़ में निफाक की बातें थी, बीच में माली सदक़ात लेने देने की बातें थी, और आखिर में फिर निफाक की बातें। पता क्या चला, जब अमली तौर पर इस्लाम को किसी हमारी जान माल वक्त की खिदमत की ज़रूरत पड़ती है तो मुश्किल होती है। अब यहाँ चंद सवाल पूछती हूँ आपसे भी, और आप भी पूछें। ग़ज़वे तबूक की तैयारियाँ कब हुई, महीने कौन से थे, गर्मी के, खड़ी फसलें थी कि नहीं, अल्लाह के नबी फ़तेह मक्का के लिए कब निकले, रमज़ान में निकले, हिजरत कब हुई, रमज़ान में। अब जब मैं लफ्ज़ रमज़ान बोलती हूँ ना, और ये जो सारे हैं, तो बीच में दो ईदें गुजरती हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अदहा। मैं आपसे पूछती हूँ, सब को छोड़ दें इस वक्त, सबक पढ़ लिया, जो वो कहते थे करते थे उनकी बातें ठीक है हमें समझ आ गई, और हम कहते हैं कितने बदबख्त थे, वक्त का नबी मौजूद था, लेकिन ये उसको खुश नहीं कर सके, इस्लाम के तकाजे मौजूद थे पूरे नहीं करे। अब हम उनको अच्छा कहें कि बुरा कहें, जब तक मैं और आप अपनी फिक्र नहीं करेंगे, अपना हिस्से का काम नहीं करेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपसे पूछती हूँ, ईद का दिन हो और आपकी कहीं ड्यूटी लग जाए, खुशी से करेंगे? कितने लोग हैं जो खुशी से करेंगे कि अल्लाह के दीन को हमारी ईद के दिन भी ज़रूरत पड़ गई, समय ना बताना, और हम क्या कहेंगे? ईद से एक दिन पहले ड्यूटी लग जाए किसी जगह, हाय पकौड़े बनाने, समोसे बनाने, शीर खुरमा बनाना, ये हमारा मसला। हमें अपने दो चार बच्चे और 10-15 मेहमान जो हमारे घर ईद के दिन आने या जाने होते हैं, उनके तकाजे इतने बड़े लगते हैं कि दीन का तकाजा तो बड़ा ही पीछे है। बस जब हम वहाँ कोशिशें कर रहे होते हैं जहाँ नतज कोई नहीं निकलने, और एक चंद घंटे की मेहनत जिसे नतीजा खुला सामने दिख रहा हो, अगर हम सुस्त होकर पीछे बैठ जाते हैं, यकीन कीजिए कि फिर अल्लाह उसकी सज़ा में उस दिन हमें तोड़ता है जब हम पूरी कोशिशें करके बैठे होते हैं किसी काम की, कोई नहीं नतज निकलते। तो अल्लाह से ये कहिए, जब जहाँ जिस वक्त हमारी ज़रूरत, हम खड़े हो जाएंगे। सहाबा के ज़रा जुमले सुनिए ना, हाय अल्लाह के नबी रमज़ान में निकाल रहे हैं हमें घर से, अल्लाह के नबी ईद भी तो बीच में आने वाली है, ओहो फिर तो हमारी ईद भी चली गई, और अल्लाह के नबी ज़िलहज के महीने हैं, इतनी इबादत के दिन हैं, और आप हमें किन जंगों में लगा रहे हैं, तस्बीहां पकड़ा दें, मुसल्ले दे दें, हम बैठ के इबादत करें। बाज़ लोग ये भी कहते हैं जी ये तो इबादत के दिन है, और अब हम ये क्या दौड़ धूप करें, राइट? ये दौड़ धूप क्या है? ये इबादत का खुलासा है। आप तस्बीह पकड़ के उसका अपनी जगह पे बैठ जाएं जहां आपको काम के लिए बुलाया जा रहा है। जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करनी तस्बीह, काम बातें करने के साथ और जुबानी बातें दूसरों से करने की बजाय क्या कीजिए, साथ जिक्र कीजिए। अब मैं कहूँगी मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ, आप मुझे फारिग कर दें, एक हफ्ते की छुट्टियाँ दे दें, मैं इबादत करूँगी, भाई ये कौन सी इबादत मैं करूँगी घर में बैठ के, या मैं नफिल पढ़ूंगी या मैं तस्बीह पढ़ूंगी, तो क्या ये जो मैं इस वक्त कर रही हूँ ये काम मुझसे छोटा? नहीं समझे? दीन की अमली भाग दौड़ से पीछे हटना और जाती कामों को इबादत कहना, ये इस बात की गुमान है इसमें कि आपको दीन की असल समझ ही नहीं आई। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अमली मैदान का गाजी बनाए। कभी जान लगती, कभी पसीना बहता, कभी वक्त लगता, माल तो बहुत ही लगता है इन रस्तों में। और आप देखिए यहाँ फिर मेरा दिल चाह रहा है खिराज तहसीन पेश करने को, उन सहाबा को जिनके साथ देने की वजह से सिर्फ 8 के बाद 9 और 10 2 साल मिले मक्का के फतह होने के बाद, और इस्लाम कहाँ पहुँच गया? सहाबा भी बैठ जाते इबादत के नाम पे, और सहाबा भी बैठ जाते रिश्तेदारियों के नाम पे और नफ्स परस्ती के नाम पे, तो ये दीन तो ना फिर फैलता। आज अगर मैं और आप एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं, अगर एक आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं, इंसान हैं, हमें जानवर और इंसान की सोच का फ़र्क है, तो ये किस नबी के साथ हुआ? उनकी तालीमात का नतीजा, और उनका साथ देने वाले अगर अमली कोशिश ना करते तो क्या होता, काम साथ ना होता। तो हर बंदा अपने वक्त की ज़रूरत को समझे। बस चीज़ों को हम जो बोझ समझ रहे होते हैं ना, वही हमारे लिए एक ढारस होती है। मसलन आप देखिए कि एक गट्ठर पड़ा है, कोई कहता है हाय इतना बड़ा, इतना बड़ा, धूप भी है मैं कैसे उठाऊंगी, और जो ही वो हाथ लगा के पकड़ता है वो तो एक अम्ब्रेला बन जाती है, पता चला वो तो रुई का गट्ठर था, फोम था, बल्कि उसको सर पे रखने से अब धूप से बच गए। मेरा ईमान है इस पे, मैं तो आपको एहसास दिलाती भी दुनिया से जाऊंगी इंशाल्लाह, मेरा ईमान है कि आप अपने ज़ाती कामों में से वक्त माल चीज़ों को निकाल कर जितना अल्लाह को वक्त देंगे, अल्लाह को अपनी स्किल्स देंगे, आपकी ज़ाती काम उतने खूबसूरत होंगे। कोई माने ना माने मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा दिल इस पे ईमान पे यकीन है मेरा इस पे कि मैं अपने काम नहीं कर सकती, मेरा असल काम मेरा रब करेगा। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये एक लफ्ज़ जो हमने अभी पढ़ा है ना, इसमें मैं युहाद दिल्ला, इसको समझ लीजिए, मुहादा क्या होता है, युहादत मुहादा, मुहादा किसी के मुकाबले में अलग महाज कायम कर लेना और किसी के मुकाबले में दुश्मन बनकर खड़े होना, ये असल में मुनाफिकीन के छुपे हुए इरादों को ज़ाहिर किया जा रहा है। वो अपने बारे में मुसलमानों की गलत फहमियों को दूर करने और अपने इखलास को साबित करने के लिए जो मुसलमानों के सामने झूठी कस्में खाते थे ना, तो इससे मकसद गलत फहमियों को दूर नहीं करना, बल्कि मकसद क्या था कि इन्होंने अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ एक गिरोह बना रखा है, गठजोड़ कर दिया। याद रखिए, जब भी कभी किसी काम से दिल में ज़रा सी सुस्ती या तंगी आए ना, कभी किसी से उसका जिक्र ना करें, वरना वो दूसरे की भी सुस्ती का ज़रिया बनेगी, उसको भी वो काम नामुमकिन लगेगा। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह के रस्तों में भागेंगे, कुछ और मिले ना मिले, लेकिन इत्मीनान और सुकून और ख़ुशी मिलेगी। दुआएं तो हम बड़ी करते हैं इस्लाम के गलबे की, इस्लाम की बातों की, लेकिन छोटे से खाने की वजह से ही हम इन चीज़ों से पीछे हो जाते हैं। अगली आयतों में इंशाल्लाह मज़ीद ये पोल खोलेंगे। अल्लाह ताला मेरी आपकी इस्लाह फरमाए, हमें क़्यामत के दिन की रसवाई से बचाए, और दुनिया और आखरत में हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों पर रखे। आसान काम नहीं है, लेकिन जो करने लग जाते हैं उनके लिए वो सबसे आसान रास्ता। चले, जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।